ओम शांति। एकदम पीछे वाले भाई आगे आ सकते हैं? करेंगे हिम्मत, टोली मिलेगी, आ जाओ इधर, आ जाओ। बहने भी कुछ आगे आ जाओ, बहुत अच्छा टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। जो नीचे बैठ सकती हैं कुछ बहने, इधर सामने जरा आगे के सोफे पर भी आ जाओ, वीआईपी बन जाओ, आगे एकदम आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आगे। कोई नहीं, अभी खाली है, आपके अलावा कोई नहीं आएगा अभी। गीत में क्या सुनी लाइन? बाबा ही संसार है, इसका मतलब बोलो, सब कुछ बाबा है, सब प्राप्ति बाबा से है। क्या ऐसा सोच लो अच्छी तरह, कहना जितना सहज है उतना सहज नहीं है ये काम। सब प्राप्ति एक से, सब कुछ वही। और बच्चे आपके, उनका क्या, उनको कहाँ भेजेंगे फिर? बोलो, उत्तर दो, माताएं उत्तर दो, बच्चों को कहाँ भेजेंगे? बच्चे भी तो बाबा के ही हैं। बोलो, अच्छे उत्तर दिया, और बोलो। ठीक है, आज हम टॉपिक ले रहे हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मन शांत रहे और जीवन में खुशी का खजाना बढ़ता रहे। कैसे जिए हम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीवन का, रोज के जीवन से जुड़ा हुआ। परिस्थिति आती हैं, आ रही हैं, बढ़ रही हैं, घटेंगी नहीं। बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी, क्योंकि ये सब खेल समाप्त होने वाला है। तो एक बार हर चीज बढ़कर चोटी पर जाके समाप्त हो जाएगी। तो हमें अपने को तैयार भी करना है इसके लिए कि कुछ भी जीवन में हो उसे देखते हुए नहीं, दिखाई तो देगा नहीं देखने वाली बात थोड़ी भारी है। जीवन में कुछ भी हो, चित शांत रहे, स्थिति बिगड़े नहीं, क्या करेंगे उसके लिए? कहने से तो नहीं होगा ना, कह तो सब देते हैं स्थिति बिगाड़ो नहीं, पर वो तो बिगड़ गई। तो भिन्न भिन्न परिस्थिति आते, स्थिति अच्छी रहे और खुशियों का भंडार बढ़ता चले। पहली बात तो ये, जिसने अपने जीवन में बहुत खुशियां जमा कर ली हैं, उसके सामने परिस्थितियां भी कम आएंगी। जिसकी स्थिति अच्छी हो गई है, परिस्थिति स्वतः ही बदलेंगी, कम होंगी। और स्थिति बिगड़ी हुई है तो परिस्थितियां बढ़ेंगी, छोटी बड़ी हो जाएंगी। पहले हमें ये याद रखना चाहिए। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था दिल्ली से, तो एक माता भी चढ़ी, बहुत सारे ब्राह्मण चढ़े थे, कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, तो मुझे देख के बड़ी खुश, एक साल से ज्ञान में आई हूँ, मेरे जैसा खुश कोई नहीं। सारे डब्बे वाले उसे देखने लगे, बहुत खुश, वो चेहरे से ही लग रहा था बहुत खुश। उसकी लड़की उसे छोड़ने आई थी, मैंने पूछा सचमुच बहुत खुश हो गई हो तुम? का बहुत खुश हूँ एक साल से। जिस खुशी की तलाश थी वो बाबा के पास आकर मिली है या नहीं? मैं कुछ अनुभवों की बातें आपको करूंगा। एक कन्या आई है, तो मैंने उससे पूछा, कॉन्फ्रेंस में आई, कैसा लगा यहां, क्या हुआ तुम्हें? कहा मुझे गुस्सा मेरा शांत हो गया यहां के, मुझे छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने की आदत थी, यहां वो मुझे महसूस हुआ ये गलत है, तो मैं संकल्प करके जा रही हूं मुझे अब शांत रहना है। पढ़ती है अभी, फिर मैंने उसे बताया क्रोध से तो विवेक शक्ति नष्ट होती है, पता है सभी को, क्रोध का सबसे बुरा अटैक बुद्धि पर होता है। क्रोध आने से तो जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना अंदर, बहुत कुछ जला देती है। प्रेम तो जलता है, शांति भी जलती है, लेकिन बुद्धि को नष्ट करता है क्रोध। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये बात सबको सीखनी है कि छोटी बातों में टेंशन में ना आए, नहीं तो खुशी तो रहेगी नहीं। एक व्यक्ति कल किचन देखने आया शाम को, मैं किचन में जा रहा था, वो देख के आ रहे थे, वो था कलेक्टर। मुझे कहने लगा कि सरकार को सिखाना चाहिए आपको ये काम करने की विधि, का हम लोगों को बहुत, सरकार तो कलेक्टर तो सरकार ही है ना, का हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ, कहाँ ट्रेनिंग ली है आप लोगों ने? मैंने कहा यहाँ बिना ट्रेनिंग लिए हुए सब ट्रेंड लोग हैं। बहुत खुश हो रहा था, कई मंत्री आए किचन देखने तो सब आते हैं, शांतिवन का किचन तो दर्शनीय स्थल भी है, रोटी मशीनों से कैसे बन रही, आजकल बहुत अच्छी बन रही है, बिल्कुल ऐसी बन रही जैसी हाथ से बनती है, तो सब देखने आते हैं कि ये इतना सुंदर काम। मैंने कहा अभी तो 10-11 हजार का ही चल रहा है, यहाँ तो 25-30 हजार का भी ऐसे ही चलता है, क्यों? हम सबको पता होना चाहिए। मैंने कहा एक तो यहाँ स्पिरिचुअल पावर है, रूहानी शक्ति, दूसरा यहाँ डेडिकेशन है, समर्पण भाव। यहाँ नौकरी नहीं है कि भाई मेरे तो 5 बजे तक ड्यूटी पूरा हो गया चले, टेलरिंग में आए हुए करते हैं ना बहुत काम सब। समर्पण भाव है, जिम्मेदारी संभालने का भाव है, सबको खुश करके भेजना है, संतुष्ट करके भेजना है, ये अंदर में गुड फीलिंग है, इसलिए ये कार्य अच्छा चल रहा है। सरकार वाले लोग क्या सोचते हैं, ठीक है चल रहा है, गवर्नमेंट की नौकरी क्यों ढूंढते हैं लोग, थोड़ा आराम रहेगा, प्राइवेट कंपनियों में काम बहुत करना पड़ता है। मैं तो युवकों को कहता हूँ काम ही करना चाहिए आपको बहुत, ये आयु काम करने की ही होती है, यंग बैठे हैं ना सभी, करना चाहिए या नहीं? जब हम यंग हैं तब काम नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े होकर करेंगे? इसलिए काम से घबराना नहीं चाहिए। एक नया सेवाधारी मैंने भेजा नीचे, किसान, पढ़ा लिखा भी खूब, एमए बीएड, समर्पित होने आया। मैंने कहा भाई देखो किचन में काम चल रहा है, तुम्हें हम 6 मास रख लेते हैं, देख लेना तुम। तो अभी काम तो खूब चल रहा था, सेवाधारी तो हर टर्न में आते नहीं। मैंने कल पूछा क्या हाल है, चुप बेचारा चुप। मैंने कहा सुना तो जो कुछ हो मैं तुम्हें हल बता देता हूँ। कंधे बहुत दुखने लगे भाई जी, क्योंकि काम भारी है, किसान का ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5-7 दिन में करते करते, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, और रोज इतना नहीं रहेगा, सेवाधारी अच्छे आ जाते हैं, डरो नहीं। कभी अभी सोचने लगो कहाँ आ गए, भागो घर, सोचने लगते है ना ज्यादा काम करना पड़ता है। तो बाबा ने जो अपना कार्य शुरू किया है इसमें, ये रूहानी वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत फैला दिए हैं, इसी से कार्य सहज होते हैं। लौकिक में भी यदि आपको अपने घरों में कामकाज सहज चलाना है तो वहां अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ योग के, प्यार का वहां वातावरण हो। डिपार्टमेंट में भी, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको काम ज्यादा करना है, कम काम में बिना थके, कम मेहनत में ज्यादा काम, थकान नहीं, तो वहां वाइब्रेशंस अच्छे फैलाओ। तो एक घंटे का काम, चलो आधा नहीं तो 40 मिनट में तो हो ही जाएगा, होगा ये प्रैक्टिकल में होगा, और सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। नीचे जैसे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये पता ही नहीं चलता था कितने लोग खाएंगे, कितने जाएंगे आज, कितने ऊपर घूमने चले जाएंगे, फिर भी अंदाज से सब ठीक चला। ऐसा नहीं कुछ बहुत वेस्ट हो गया, भोजन वेस्ट नहीं हुआ। तो अगर वाइब्रेशंस बहुत अच्छे बना दिए जाएं तो कार्य बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो मैं, माताएं बहुत बैठी हैं घरों में रहने वाली, और भाई ये ध्यान दें, और जो डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं अपने अपने घरों में डिपार्टमेंट में, माहौल जितना हल्का और खुशी का होगा उतना सब कुछ अच्छा होगा। दो चीजें याद रखनी, हल्का माहौल, खुशी का माहौल। बातें तो रोज आएंगी, बढ़ेंगी भी, न जाने कब किसका हिसाब किताब चुकतू होने लगे, न जाने कब किसके सामने कौन सी बात बड़ी परीक्षा बनकर आ जाए, कौन सी बीमारी उभर जाए, हिसाब किताब चुकतू होने हैं। तो हल्केपन का माहौल, खुशी का माहौल। तो क्या करेंगे, कोई भी बात घर में हो जाए उसे भारी नहीं होने देना। माताओं का काम है पहले ये, छोड़ो यही बोलो आप, छोड़ो इसे, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है वो सब ठीक कर देगा। ये बोलने से ही माहौल में हल्कापन आएगा। क्यों हुआ, किसने किया, उसने किया होगा, उसने शिकायत की होगी, ये सब भी नहीं। मुझे कई अनुभव याद आ रहे हैं। आज ही सवेरे मुझे ऊपर आना था हाई कोर्ट के जज आगे मिलने, कर्नाटक हाई कोर्ट, बड़ा खुश। हम तो सोचते हुए बड़े आदमी आए, लेकिन वो तो बेचारे बहुत सिंपल, बहुत खुश। कहा 15 साल से सोच रहा हूं यहां आने की, सीनियर जज था, उसके नीचे 24 जज हैं, बता रहे थे मुझे। कहा बहने उन्हें कितना कहा मुझे चलो, मैं भी चाहता था चलू, नहीं आ पाया, अब आया हूं, बस शुरू हो गया मेरा। तो बहुत अच्छे अच्छे, अब ऐसा लगता है 1-2 साल में ये हो जाएगा कि हमें किसी वीआईपी को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए मना करना पड़ेगा, ये सच बात है। और कोई वीआईपी रहेगा नहीं, वीआईपी वो होंगे जो योगी और पवित्र हैं। एक हाई कोर्ट के जज और आए थे पीछे ज्ञानसर रोड में, वो तो सत्य की खोज में था, बहुत शुरू से पढ़ता लिखता, कहा मैंने बहुत समाधि लगाई, बहुत कुछ किया, अब सत्य पर पहुंच गया। यहां से जाते ही अपने घर में बाबा का कमरा बना दिया और सेवा भी शुरू कर दी साथ साथ। तो देखो ऐसे लोग भी फटाफट ज्ञान ले रहे हैं, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है अब मनसा वाइब्रेशंस बहुत फैलाएं, इससे देवकुल की आत्माएं खींच खींच कर आएंगी। आप अपने घरों में खुशनुमा माहौल बनाओ। किसी भी बात को सभी ध्यान देना इस बात पर, जल्दी से जल्दी खत्म करना, नहीं तो छोटी बात बड़ी होने लगती है। जितना उस पर चर्चा करेंगे, क्या क्यों करेंगे, वो बात बड़ी होगी। एक अनुभव याद आता है मुझे, यही मधुबन में कोई एक कन्या कर रही, उसकी कुछ समस्याएं थी, बेचारी बड़ी परेशान थी। ऐसे ही मैं रात को क्लास में आया, बाहर मुझे मिली, समस्या है कल फैसला होने वाला मेरे लिए। फैसला तो बड़ी चीज होती है ना जीवन का, परेशान भी थी। मैंने उसको एक ही बात कही, अब बाबा को समर्पित करो अपना जीवन, और एक ही बात याद रखो, तुम शांत होगी तो समस्या भी शांत हो जाएगी। अब पता नहीं मेरे कहते उसको क्या तीर सा लगा, उसका गुड टाइम होगा, कहा मैं शांत होती हूँ, सब छोड़ दिया बाबा पर, और अगले दिन फैसला उसके फेवर में हो गया, बहुत खुश। हम बातों को जितना बढ़ाएंगे, बातों में जितना उलझेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, क्या होगा, योग की शक्ति हमारी घटेगी, मन कमजोर होगा, तो वही छोटी बात हमें पहाड़ जैसी दिखाई देने लगेगी। है वही, पर क्योंकि हम कमजोर हो गए तो बहुत भारी लगेगी, चिंताएं हो जाएंगी, पता नहीं अब क्या होगा। तो क्या होगा, ये संकल्प जो हमारी खुशी को छीनता है, जो हमें बहुत उलझनों में डालता है, चित्त को शांत नहीं रहने देता, अब इसको एक संकल्प से ही हटाना है। क्या होगा, उत्तर इसका भाई देंगे। वाह, कितने अच्छे शब्द बोले तुमने, तो बड़ी खुशी से बोल दिया। अब इसमें इस शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर ले, यही बात, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इसको पक्का करते चले डेली, क्योंकि ये जो बात है, जो हो गया वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, हम सुनते आ रहे हैं ना, तो बड़ी कॉमन सी हो गई कि अच्छा होगा, पता नहीं कब होगा, अब तो नहीं है। दुखी भी होते रहेंगे और कहते भी रहेंगे अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा मजा। तो पहले से ही अपने अंदर ये संकल्प भरते चले, बहुत सुंदर रिजल्ट है इस संकल्प के, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हमारा एक संकल्प ही बहुत कुछ परिवर्तन लाएगा। मान लो कल कोई बात है, हम उलझे हुए हैं, आज से हम संकल्प कर दे नहीं सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो कल जो होने जा रहा है, हमारे इस संकल्प के वाइब्रेशंस उस पर प्रभाव डालने लगेंगे, वहां कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करने लगेंगे। ये संकल्पों की बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि ये बात किसने कही, किसने कही, मनुष्य को तो आता ही नहीं, स्वयं भगवान ने कही, तो उसके शब्दों में बहुत पावर है, हम उसे अपनी पावर बना लें। भगवान ने जो वचन बोले उनमें बहुत पावर है, हम उन्हें अपनी पावर बना लें, चित्त शांत रहने लगेगा, और दो चार बार जब अनुभव हो जाएंगे, फिर यही संकल्प हमारे जीवन में जादू की तरह काम करने लगेगा। तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, चित्त को हमें शांत करना है, हमें इसके लिए चाहिए कौन सी पावर, योग की पावर के साथ ज्ञान की पावर। ज्ञान भी बल है या नहीं, एक बात याद आ जाए कि बाबा कह रहे हैं मैं बैठा हूं चिंता न करो, आधी चिंता खत्म हो जाएगी या नहीं, है अनुभव है ना। और फिर अगर ये भी याद आ जाए, बाबा ने कहा मुश्किल आए प्यार से कहना मेरे बाबा आ जाओ, तो नहीं, अगली लाइन बहुत सुंदर है, वो पक्का भर लो अपने अंदर आज, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? भगवान सामने बैठ कर कह दे, मैं बंधा हुआ हूं तुम्हें मदद करने के लिए, तुम केवल आह्वान करना। इससे अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता। बस हम उसको बुलाएं, अपनी बात उसके सामने रख दें। सच तो ये, उसे कहने की जरूरत भी नहीं कि मदद करो बाबा, वो बिना कहे ही कर देता है। हम तो प्यार से उसका आह्वान करें, बता दे ये है, जैसे डॉक्टर को बता देते ना, डॉक्टर ये बीमारी है, हम मदद करना, दवाई देना, जो कुछ करना है वो उसका ही काम होता है ना। फिर तो ऐसे महावाक्यों का बल बहुत सुंदर है या नहीं? मैं आपको दो चार गहरे महावाक्य सुनाऊं बाबा की, उनकी आप प्रैक्टिस करो तो लगेगा ये बहुत बड़ा बल है। तुम साक्षीपन की सीट पर बैठे रहो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ये बाबा के महावाक्य, कितनी गजब की बात है। लेकिन साक्षीपन की सीट थोड़ी सी ऊंची स्थिति है, पर थोड़ा सा अभ्यास करें तो हम साक्षी रहेंगे। इसी दो दो संकल्प जोड़ दें, हम साक्षी हैं और सब कुछ अच्छा होगा। एक बाबा का महावाक्य जो आजकल स्लोगन लिख के भी मिलने लगा है नीचे, मैं उन्हें बहुत कहता था भाई इसको तो तुम प्रिंट करो और दो सबको, तुम तो केवल मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मगन रहना सीखेंगे, वो तब नहीं होगा जब समस्या आ जाए, लेकिन पहले से ही वो आदत हो तो समस्या को एक तरफ करके हम बाबा की याद में मगन होंगे तो समस्या स्वतः ही लोप हो जाएगी, बाबा करने लगेगा। मैं पढ़ा करता था जब छोटे थे, एक बात याद आई मुझे, तो एक विष्णु का भक्त जंगल में बैठा है पेड़ के नीचे, उसकी भक्ति में मस्त है, लीन है, उसने आंखें बंद की हुई हैं, उसको विष्णु के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, ऊपर एक पेड़ पर सांप है, अब उसने फना नीचे को करना शुरू कर दिया है उसको काटने के लिए। वो तो नीचे है थोड़ा, अब उसने अपनी पूंछ पूरी लपेट ली है टहनी को, डाली को, और वो नीचे लटकना शुरू हुआ है। तो क्या दिखाया था वहां, तुरंत विष्णु का ध्यान उधर गया, अरे ये मेरे भक्त को नाक डस रहा है, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ा, काट दिया नाक को, भगत को कुछ पता नहीं। तो ऐसे ही होगा, हमें पता नहीं चलेगा पर बाबा हमारी समस्याओं को नष्ट करता रहेगा। बहुत मदद मिलेगी आगे चलकर, मुरलियों में बहुत आया है पीछे, साक्षात्कार बहुत होंगे। याद है अभी अभी की मुरलियां है 15 दिन की, क्या क्या दिखाता रहेगा बाबा, पता भी नहीं चलने देगा कब विनाश हो गया, मगन रखेगा पहाड़ियों पर तुम्हें, यहीं से दिव्य दृष्टि से साक्षात वो विनाश देखते रहोगे, क्योंकि ये संभव है अखबार टीवी ये सब बंद हो जाए उस टाइम, क्योंकि इनसे ही तो सब पता चलता है ना, लोग दुखी होते हैं, ये भी बंद कर दे बाबा अब किसी को पता ही नहीं चले कहाँ क्या हो रहा है, फटाफट सब काम होता जाए, ये भी संभव है होगा, क्योंकि जिस दिन भी ये पहला एटम बम छूट गया किसी को कुछ पता नहीं, ऊपर के जो सैटेलाइट्स हैं जिनसे ये फोन नेटवर्क चल रहे हैं ये सब कितने फेल होंगे अभी किसी को अंदाज नहीं है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो हम बाबा की मुरलियों से कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट रखें सामने, जो हमें अचल अडोल बनाए, जो हमें बहुत खुशी प्रदान करें, जो हमारे चित्त को शांत करते हों, हमें बल दे देते हों। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत अच्छा लगता है। सामने खड़ा होकर बाबा कह रहा है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। कितना अच्छा है, भगवान से जिसे हम मांगते थे। और दिखाया है कि किसने बहुत तपस्या की, प्रभु जी राजी हुए, आया और कहा एक वरदान मांग लो, एक। ये नहीं कहा सब कुछ मांग लो, यहां तो मांगने को भी नहीं कह रहा है। मेरे से जो चाहो ले लो, सब कुछ ले लो। तो क्या करना चाहिए हमें, बोलो कुमारो, क्या करना चाहिए, बोलो। बाबा को खाली कर देना चाहिए, सब कुछ ले लेना चाहिए, कुछ ना छोड़ो उसके पास। माया ने हमें खाली किया, हम भगवान को खाली करेंगे। अब माना जो कुछ उसके पास है वो सब तो हमारा ही है ना। भले ही बाबा भी ये शब्द बोलते हैं, पर बाबा तो ऐसा है, सब कुछ एक एक को देकर भी सब कुछ उसके पास रह जाता है। देखो किसी के पास 100 रुपए हो, 4 बच्चों को बांटे, 25-25 जाएगा, उसके पास खत्म हुआ। लेकिन बाबा का बटता नहीं है, हर एक को सब कुछ, फिर भी सब कुछ उसी के पास। मैथमेटिक्स इसको सिद्ध नहीं कर सकता है कैसे होता है। एक भाई अभी मिलने आया, यहाँ आने से पहले ही सुना रहा था अनुभव के, मैंने बाबा से 3 प्रश्न पूछे थे योग में, ज्ञान में चल गया 1 साल से बहुत अच्छी तरह, सुनाए 3 प्रश्न। कहा, मैंने कहा बाबा आपको ये विद्वान लोग निराकार निर्गुण कहते हैं, कहते हैं निर्गुण भगवान निर्गुण है। तो बाबा ने जैसे आवाज दी, निर्गुण नहीं गुणों का सागर हूं। और कहा मेरे को वंडरफुल फीलिंग होने लगी, जैसे सागर की तरह लहराने लगा हो कुछ मेरे अंदर, ऐसी मुझे फीलिंग हो गई। कहा मैं समझ गया कि ये विद्वान लोग वही रटा रटा ही बात सुना देते हैं। कोई पूछे कि भगवान से बुद्धि मांग रहे हो, शांति मांग रहे हो, और कहते हो उसके पास गुण ही नहीं है कोई, जिसके पास गुण न हो उसे क्या कहा जाता है दुनिया में, तो निर्गुण नहीं गुणों का सागर है। तो ज्ञान की ऐसी अच्छी पॉइंट 10-12 सभी अपने पास मुरलियों से लिख कर रखें। अव्यक्त मुरलियों में बहुत अच्छी बातें आती हैं, रोज वरदान में बहुत अच्छी बातें आती हैं, कभी स्लोगन में भी। हाँ भाई देख लेना, वहां भी टेलीफोन एक्सचेंज के आगे बहुत सारी पॉइंट हैं, लिख लेना। अब उनको यूज करना, एक एक पॉइंट हमारे लिए बल बन जाए, ताकि समय पर चित्त शांत रहे। समय पर ही नहीं, हमें इस जीवन को ऐसा जीना है कि सारा ही समय हमारा चित्त अब शांत हो जाए। हमें शांति की तलाश नहीं है, अब शांत हो गए हम। ईश्वरीय शांति, वो और शांति थी जो भक्ति में ढूंढते थे, यहाँ तो बाबा की शांति, शांति के सागर की शांति हमारे पास है, लेकिन अथाह ज्ञान भी उसका हमारे पास है। तो हमें अपने जीवन को ऐसा जीना है कि मन पूरी तरह शांत रहे। तो क्या होगा, हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी। साइलेंस पावर का चुप रहने से नहीं होता, योग की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर जैसे साइंस आज चमत्कार कर रही है, हमारी साइलेंस उससे बहुत ज्यादा सुख देगी मनुष्यों को। साइंस ने भी तो सुख दिया ना, बहुत ज्यादा, कम नहीं दिया। पिछले 25-30 सालों में ही घर घर में वो सब चीजें पहुंच गई जिसकी इंतजार थी, तलाश थी, जो मेहनत कराती थी, मेहनत से छुड़ा दिया ना विज्ञान ने। कुमार जो भोजन बनाते हो आजकल, वो एक चूल्हा आता है ना इलेक्ट्रिक छोटा सा, बेड पे रख के भी, क्या नाम मुझे भूल गया, हाँ इंडेक्स, बेड पे रख के भी बना लो, कोई चक्कर ही नहीं, न धुएं का, न गर्मी का, न जलने का, है ना, इतना सुख दिया साइंस ने, कुछ भी नहीं। ऐसे नीचे हमारे यहाँ देख रहे थे लोग, मैंने कहा इसको पतीले को हाथ लगाओ, वो डरे, गर्म होगा बहुत, अब वो तो है ठंडा पूरा, बाहर से ठंडा। मैं उन्हें हंसने लगा, देखो बिना आग के भोजन बन रहा है, क्या के बिना आग के कैसे बन रहा है, बाहर हाथ लगाए बिल्कुल जैसे ठंडा पानी और अंदर भोजन बन रहा है। तो ये विज्ञान है ना, विज्ञान ने सुख दिया, साइलेंस पावर का सुख उससे बड़ा होगा। अब विज्ञान ने मन का सुख तो नहीं दिया, किसी को मन की बीमारी लग जाए, कोई दुखी हो जाए, उसे तो विज्ञान ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर लोग दवाई देके रोग को मिटा सकते हैं, पर मन को तो नहीं ठीक कर सकते। वो दवाई हमारे पास है, और अगर साइलेंस पावर हम इस तरह बढ़ा दें तो ये बहुत सुख देने वाली चीज होगी संसार को। और इसमें एक सुंदर राज ये भी है, आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, इस साइलेंस पावर के बल से साइंस परफेक्ट होगी। अभी साइंस परफेक्ट नहीं है, उसमें खोज चल रही, रिसर्च, लेकिन एक समय अब जल्दी आएगा कि उसकी सारी रिसर्च, सारी खोज पूर्ण हो जाएगी। इसको कहेंगे साइंस परफेक्ट हो गई। तो बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य बताया है, ये परफेक्ट साइंस, ध्यान से सुन लें सभी, परफेक्ट माना संपूर्ण, ये अपूर्ण मनुष्यों का विनाश करेगी, और जो संपूर्ण मनुष्य होंगे देवी देवता, उनके लिए सुखदायी होगी। तो ये दोनों काम होगा, शुरुआत होगी हमारी साइलेंस पावर से। तो जैसे जैसे हमारा योग बढ़ेगा, वैसे वैसे साइंस परफेक्ट होगी, परफेक्ट साइंस कलयुग का यानी इम्परफेक्ट लोगों का विनाश करेगी, और परफेक्ट जो देवता होंगे उनके काम आएगी। सतयुग में इससे भी ज्यादा सुख होगा विज्ञान का। तो हम मन को शांत रखें, संसार में इस समय एक सबसे बुरी बीमारी ये चल रही है, बताओ कौन से, बढ़ती जा रही है, अरे वो तो बीमारियां हैं ही नहीं, ज्यादा सोचने की आदत, ये डिप्रेशन के पहले के लक्षण है, डिप्रेशन से पहले ये आता है, और इन सब के कारण ये नेट और मोबाइल फोन है। अभी भी कोई अपनी लड़की को लेकर आए थे, कहा ये तो भाई रात को 3-4 बजे तक मोबाइल पे ही रहती है, फिर सोती है, दिन में 3 बजे उठती है। देख लो हाल, क्यों क्या होगा कि ये सब करने से ब्रेन वीक, सोएंगे भी ज्यादा, और आगे चल के ये हो जाएगा कि सोएंगे ही नहीं, पहले ये चीज ज्यादा सुलाएगी और फिर ये चीजें सोने नहीं देंगी, क्योंकि गंदगी से ब्रेन मस्तिष्क फुल हो जाएगा, वो सोने नहीं देगा। ये बनेगी संसार के लिए अब महामारी, ये कारण होंगे। जो ये विज्ञान की देन हुई है ना, बहुत अच्छी, नेट देखो, यूट्यूब खोलो, उसमें आएगा बोलो भाई, जो बोलोगे वही आ जाएगा, जादू का पिटारा है ना भाई, मुझे गीत सुनना है, मुझे एक दिन एक गीत सुनना था, कहाँ ढूंढू भाई, वो एक गीत है बहुत पुराना, मुझे भूल रहा है, देश के प्रेम के लिए है, जब अंग्रेजों से भारत स्वतंत्र हुआ तब का है, मैं सोचा है कहाँ मिलेगा, किसने बताया, कहीं नहीं ढूंढो, लाओ मैं करता हूँ, फटाफट यूट्यूब खोला, उसमें कहा स्पीक समथिंग, बोला गीत का नाम आधे मिनट में थोड़ा उसने सर्च किया, गीत आ गया, ए मेरे वतन के लोगो जरा या नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दूसरा था, इसी से जुड़ा हुआ। तो बहुत अच्छा आ गया ना विज्ञान का, लेकिन इन चीजों का कन्या बहुत बैठी अगर कोई मिसयूज करे तो ये सबसे, इसको कहेंगे श्राप, मानवता के लिए अभिश्राप, वरदान है नहीं तो। आपको कुछ भी देखना है फट से देख सकते हैं, लेकिन मिसयूज किया जैसे बहुत लड़के लड़कियां कर रहे हैं। अब ये जीवन थोड़ा ही है कि शायद रात जागे और शायद रात सोए, बेकार हो जाएगा ना सब कुछ, न पढ़ सकेंगे, मैरिज भी हुई तो वहां क्या करेंगे, वहां कोई सोने देगा, डंडे मारेंगे, सोने आई यहां, मैरिज फेल होगी, वापस घर आएंगे, तो गड़बड़ कितनी हो रही है। इसलिए हमें ज्ञान के बल से अपने चित्त को शांत करना है, बहुत पावरफुल बनाना है, और खुश रहने के कई अलौकिक मार्ग यूज करने हैं। जैसे सवेरे अगर हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करें तो मन खुशियों से भर जाएगा। पहला ही भाग्य कौन सा है हमारा? सर्वश्रेष्ठ है वो, उससे बड़ा भाग्य चारों युगों में कोई नहीं हो सकता। मैं कन्याओं से पूछना चाहता हूं, हाँ, उठते ही कल याद करना, कौन मिला, भगवान मिला इससे पहले, कौन मिला, और दादी जानकी की बात, मैं कौन, मेरा कौन, ये याद करना। क्या देखा इन आंखों से इस जीवन में? मैं तो सुनाता हूं कई बार, मैं तो सोचा करता हूं आजकल, 50 साल हुए मुझे इधर मधुबन में समर्पित हुए, मैं सोचा करता हूं इन 50 सालों में तुमने क्या क्या देखा। मुझे घंटों बीत जाए ये याद करने में क्या क्या देखा, और वो क्षण बहुत पावरफुल डीप साइलेंस के परमानंद देने वाले होते हैं। वो देखा जिसको देखने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी भी तरसते रहे, वो पाया जो किसी को नहीं मिलता, पाया या नहीं, वो संपूर्ण ज्ञान मिल गया जिसको खोज रहे हैं लोग, आज भी खोज रहे हैं शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, कहीं नहीं मिलता, हमें घर बैठे मिल गया, सरल शब्दों में मिल गया, बोली बोली माताओं को मिल गया, बिना पढ़ी लिखी गांव की माताओं को मिल गया, मिल गया या नहीं, कुछ जानना बाकी रहा? संसार के बड़े से बड़े विद्वान को ये नहीं पता आत्माओं का घर कहाँ है, और हमारे लिए ये सबसे छोटी बात है या नहीं, सबसे छोटी, बच्चों को भी सिखा दिया माताओं ने। तो क्या मिल गया इस जीवन में? ज्ञान मिलना संपूर्ण, ये छोटी प्राप्ति नहीं, ये लाइट मिल गई हमें, प्रकाश मिल गया, इस ज्ञान को मिलने से हम लाइट हाउस हो गए हैं। सोचो कुछ भी जानना बाकी नहीं बचा, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमारे पास ना हो, हो गया या नहीं। तो ये प्राप्तियां याद करना सवेरे, और जो लिखना जानते हैं वो कम से कम 16 बड़ी बड़ी प्राप्तियां लिखना, कल लिख लेना, आज भी याद कर लेना, क्या क्या मिला, रहा जीवन की राहें कैसी थी, कि कहां जाना है ये पता ही नहीं, चल रहे हैं बस, दौड़ रहे हैं, कहां तक पहुंचना है ये पता ही नहीं था, मंजिल मिल गई, मंजिल पे चलने का ताकत भी, ज्ञान, सब कुछ मिल गया। ये नहीं मंजिल तो पता चल गई लेकिन टांगे चल ही नहीं रही हो, शक्तियां मिल गई हैं, खुशी मिल गई, बहुतों का जीवन खुशियों का भंडार बन गया है, बहुतों का बन गया है, जिनका नहीं बना उन्हें अपनी ये एक आदत चेंज करनी है। कौन से? ज्यादा सोचने की। ये बहुत बुरी आदत है, जिसको भी ये लग गई हो संभले वो, क्योंकि अगर बढ़ती जाती है फिर इसे कंट्रोल करना असंभव होता है। फिर तो आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, कैसी? ब्रेन को डल करने की, ताकि आप सोच ही ना सकें। तो ब्रेन डल हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? नुकसान, बिल्कुल बेकार हो गए। न योग लगेगा, न अच्छे संकल्प आएंगे, न खुशी होगी। इसलिए जिस कोई आदत पड़ जाए वो एक छोटा सा काम कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही 108 बार लिखो कुछ दिन तक। कुछ ही दिनों में आपको अच्छा लगेगा, और ज्यादा लिख ज्यादा दिन लिख ले तो सदा के लिए इस बुरी बीमारी से आप बच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जब हम ज्यादा सोचते हैं हमारे ब्रेन की और मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हैं, इससे कई बीमारियां बढ़ती हैं, कई परेशानियां आपके पास बढ़ेंगी, आपके वाइब्रेशंस कमजोर हो जाएंगे, घर में भी कमजोर वाइब्रेशंस के कारण कई समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि आजकल बैड एनर्जी का इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बढ़ेगा। आप सोचो जब बहुत लोग मरने लगेंगे, परम धाम जाने का अभी टाइम नहीं आएगा, तो क्या होगा? वो इधर ही भटकेंगे, ऊपर आकाश में भटकने लगेंगे। उनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को बड़ा कष्ट देगी। उनसे बचने के लिए हमें योग का कवच, मास्टर सर्वशक्तिवान के वाइब्रेशंस अपने चारों ओर रखने होंगे, ताकि हमारे वाइब्रेशंस उन्हें जाएं, उनके हमें नहीं आएंगे। तो हमारे वाइब्रेशंस पाकर वो आत्माएं मुक्त होने लगेंगी, ऊपर जाएंगी परम धाम की ओर। नहीं तो उनका पाप उनको नीचे की ओर लाता है, भारी है ना वो, पाप भारी कर देता है उन्हें और वो नीचे की ओर आने लगते हैं। तो इस संसार में ये समय, समझ गए ना कौन सा समय, जब विनाश तो होने लगेगा लेकिन घर का द्वार नहीं खुलेगा परम धाम, तो ये बीच का समय संसार के लिए बहुत भारी होगा। ऐसे में योगी आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस फैलाकर इन आत्माओं को मुक्त करना होगा। याद है बाबा हम सबको बोलते आए, तुम्हें सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना है, तुम ही आधार मूर्त भी हो और उद्धार करने वाले भी हो। तो ये बड़ा काम करना है, तो जब बड़ा काम करना होता है तो बड़ी स्थिति, बड़े विचार, बड़ा दिल चाहिए। छोटे दिल वाले बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटी स्थिति वाले भी बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। तो बहुत खुश रहना है, शांत होना है। ओम शांति।
शांति से भर लीजिए, शांति से।